इसलिए गौड़ वेदांत समिति की स्थापना की और हम लोगों का नाम भी भक्ति वेदांत विक्रम, भक्ति वेदांत नारायण, भक्ति वेदांत विक्रम इत्यादि पर जैसा बहुत से नाम दिए। हम लोग भी इस धारा को आज तक रखे हैं। बहुत से लोगों ने इसका प्रतिवाद किया था। गुरु महाराज ने अपने सुंदर पुत्रों से उनको निरीक्षक कर दिया। गुरु महाराज ने प्रमुख भागवत पत्रिका गौड़ीय पत्रिका भागवत पत्रिका की स्थापना की। प्रभुपाद सिंह ने आपकी लिखी जिसको देख करके मायापुर के भी जो आचार्य थे उन्होंने भी उनका नाम हटा करके और उसको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने चालू कर दिया गुरु महाराज के प्रभुपाद की आरती अद्भुत आरती उन्होंने की। इसके बाद में उन्होंने सन्यासियों के द्वारा ब्रह्मचारियों के द्वारा बंगाल में भी भारत में सर्वत्र प्रचार केंद्र स्थापन किए। बृहद मृदंग भी भारत प्रेस को स्थापन किया। चिशुड़ा में महाराज जी को पहले इसके लिए भाग दिया। उसके बाद से भी तो महाराज जी भी इसे देख रेख करते थे प्रेस की और उस तरह से सर्वत्र प्रचार करना। उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे सारे भारतवर्ष में उन्होंने प्रचार केंद्र स्थापन किए और उन्हीं के कृपा से आज देश में भी धीरे 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 ये सब प्रचार सब हो रहा है। उन्हीं की कृपा उनका विचार क्या था उन्होंने ये मौजूद धाम परिक्रमा इन्हों जो स्थापित की इसका तात्पर्य क्या था मनुष्य जीवन का तात्पर्य क्या है। इसलिए नदी धाम परिक्रमा के माध्यम से घर घर में यह संदेश देने के लिए नदी धाम की परिक्रमा की सब लोग यहाँ आए महाप्रभु के विचारों को सुने और सर्वत्र वो प्रचार करें। नदी धाम परिक्रमा का मूल उद्देश्य क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है कौन अभी कुछ बात के लिए महाराज जी ने बतलाया जीवन का उद्देश्य भी बड़े सुंदर से उन्होंने स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कृष्ण लीला अप्रकट होने के बाद में उन्होंने कुछ विचार किए। कृष्ण चंद्र है कौन रसो वैश्य स्वयं रस के समुद्र है। जो रस के समुद्र नहीं है रसिक शेखा भी है दोनों बात रस के समुद्र भी और रसिक शेखा भी दोनों। उन्होंने देखा जगत में ऐश्वर्यमयी भक्ति का प्रकाश है। बड़े बड़े आचार्य के लोग जगत में आए और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। रामचंद्र जी आए नृसिंहदेव आए उनकी शक्तियां भी आचार्य के रूप में रामानंद मध्व विष्णु स्वामी हिमबादी चंद्र बातचीत किया गया है। उन लोगों ने भक्ति का प्रचार किया किंतु भक्ति और रस का प्रचार नहीं किया। कृष्ण ये सर्व कवि है
महाप्रभु
होने के वजह से उन्होंने देखा ब्रज भक्ति से जगत अस्थिता है। जगत में ब्रज की भक्ति नहीं है। लोग भगवान का भजन करते हैं भक्ति करते हैं कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं और कुछ लोग वैकुंठ की गति को चाहते हैं। अजामिनी इत्यादि भगवान का नाम करके वैकुंठ तक गए उनका प्रेमी को हुआ क्या हुआ ये उल्लेख नहीं है। वैकुंठ में गए साधारण उनकी भक्ति, उनसे वैकुंठ में गए या वैकुंठ से नीचे ले देता ये सब का भगवान से उनका क्या संबंध था ये भी नहीं। इसलिए कृष्णचंद्र जी सोच रहे हैं जगत में राग मार्ग का हम प्रचार करें जिसके द्वारा लोग समझ सकेंगे ये प्रेम की भक्ति क्या है और उसके द्वारा किसके भी उसके द्वारा प्रतिबिंबित हो सकते हैं। ऐसे प्रेम भक्ति का मार्ग हम प्रवेश करें। इसलिए अनाकृति करें किरा कन्यावती न करो सुंदर हनुमान इत्यादि है राम की सेवा करते हैं बहुत उच्च कोटि की भक्ति है किंतु इस प्रेम के द्वारा ब्रज भाव होता है। हाथ जोड़कर के नीचे खड़े रहने उनकी कोई सेवा नहीं कर सकते बस दूर से ऊपर की सेवा करते रामचंद्र जी उनको गले से नहीं लगा सकते संभव नहीं। सभाओं जैसे बजे के सभा है सुदाम सुबह इत्यादि मधुमंडल इत्यादि है नंदबाबा के छोटा है कृष्ण को गोभी दे देकर के लाल प्यार करते हैं ये रामचंद्र जी के लिए कोई संभव नहीं है। हनुमान के लिए संभव नहीं है भारती के लिए संभव नहीं है संभव या कभी सीताजी के लिए संभव कर नहीं है। इसलिए इस राग मार्ग को द्वारा जिससे कि वृद्धि भक्ति पाई जाए जगत में कोई प्रचार होना चाहिए। कृष्ण भी इस चीज को नहीं दे सके क्यों रस्ते समुद्र है लताओं को भी प्रेम दिया ये बात ठीक है किंतु ये वृद्ध भक्ति सहज सरल रूप में इस राग मार्ग का प्रचार नहीं किया संभव करने के लिए था। क्यों भक्त जी और ठाकुर जी ने जैसे हमें एक विचार किया है कृष्ण रस से समुद्र है रसो वैसा है साथ ही साथ में कृष्ण अखंड अनंत और अपने अक्षर जीवन के पूर्ण पूर्ण तत्व है बात ठीक है। ऐसी कोई चीज बाकी नहीं है रस के संबंध में या भक्ति के संबंध में किसी भी दिशा में जिसको कृष्ण को पता नहीं हो कभी नहीं। ये कृष्ण दो प्रकार के एक ही परतत्व कि कृष्ण एक रस और बहुरस एक रस मैंने क्या समस्त रसों के विषय है जितने प्रकार के सबसे ये विषय विग्रह हैं उनका रसोत्पादन करते हैं और इस तरह से वह हैं इसका आनंद स्वयं उपलब्ध करते हैं कि वे आत्माराम है इनके बाहर में रस और कुछ भी नहीं है सब कुछ पूर्ण भूमि है। इन चीज के साथ साथ में अचिंत भेद आने की दृष्टि से एक और विशेष बात है वो क्या वे बहुरस भी एक रस होने के साथ साथ में वो बहुरस भी है। बहुरस माने क्या समस्त रसों के विषय होने पर भी एक स्वर्गत रस है एक आत्मगत रस है। आत्मरस माने क्या कृष्ण के अंदर में जो जितने सब रस है रस के समुद्र है उसके विषय है ये तो कृष्ण है ये आत्मगत भाव। और स्वर्गत माने क्या पर्वत माने बताया भक्तों के हृदय में जो रस है कृष्ण की सेवा करने की जो प्रणाली है भावना है उस भावना को के अनुसार में वो कृष्ण की सेवा करते हैं जिसे कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। ये पर्वत भाव ये दोनों मिलाकर के इस लीला रस का साधन करने के लिए ही कृष्ण चैतन्य महापुरुष के रूप में दीजिए नहीं तो पूर्ण नहीं हो सकता ये रस आत्मा होने के लिए पूर्ण नहीं रहेगा भले नहीं हो रहे दिशाओं के सबके दिशा विग्रह क्योंकि पर्वत जो भाव है गोपियों में ये चरण सीमा तक है और उन गोपियों ने भी सबसे कम भावना किसमें चंद्रावली और सुमती या पर्वत भाव। कृष्ण को सुख करने के लिए सर्वोत्तम जो भाव है, जो कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को आनंद देती है और उनका आनंद कृष्ण के आनंद से कोटि गुण अधिक है, पर्वत भाव। कृष्ण को गोपियों के दर्शन से अपने प्रिय सखाओं से और अपने जितने प्रिय हैं उनको उनकी सेवा प्राप्त करके कृष्ण को जो आनंद होता है उनसे एक दो गुण नहीं कोटि कोटि गुण जो पर्वत जो भाव है उसमें गोपियों को नंद बाबा यशोदा को सखाओं को कोटि कोटि गुण आनंद होता है। उन्हें विशेष करके गोपियों को और उन्हें भी विशेष करके स्मृति जाति का आनंद होता है। कृष्ण इस आनंद को अनुभव करने के लिए लायक रहते हैं। ये परब्रह्म होने पर भी, आत्माराम होने पर भी, रस के सर्वस्व होने पर भी ये राधिका जी का ये जो भाव है, महाभाव इत्यादि इनके लिए अपरिज्ञात नहीं जानते। राधा जी को हमको सेवा करने से क्या सुख होता है कृष्ण को पता नहीं का इतना आनंद होता है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण इसी चीज के लोग थे इस जगत में आए। राधा या प्रणय महिमा किस विश्व आनंद हुआ इसलिए राधा जी की प्रणय महिमा कहती है वो हमारे माधुर्य को आस्वादन कर उनको क्या सुख लाभ होता है, कैसे उनके हृदय में भावना होती है, कृष्ण के हृदय में आस्वादन करने की लाभ होती है। और साथ ही साथ में हुआ क्या, उसके भाव की एक छोटी सी बूंद को मैं जगत में भी दे सकूं। इसलिए अनाकृत करी सियात करुणियावते न करो समर्पय तुम उन्नत उज्जल शांत भक्ति। उन्नत उज्जल रस का देने के लिए क्या राधा जी का भाव नहीं, उनकी दासियों के कुछ भाव को जो शोभा है उसकी उन्नत उज्जल की शोभा वो खंड रूप में अंशित रूप में जीवों का जितना विचार है उसको देने के लिए और उनके राजमार्ग की शिक्षा देने के लिए और अंत में वही भाव जो अभी बतलाया उसको श्रीमती राधिका जी के भाव को आस्वादन करने के लिए कैसे राधा जी का भाव लेकर के और उनके इन चीजों का मैं आस्वादन करूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हुआ हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम महाप्रभु जी के लाइन में, हम रूप सनातन इत्यादि के लाइन में, रघुनाथ जी के लाइन में, हम अपने गौरव परंपरा की लाइन में, हम अपने भक्तिविनोद ठाकुर और प्रभुपाद जी के लाइन में, हम अपने गुरु जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद तिल भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज के लाइन में जो कि राधा पक्षीय थे, ये सब कुछ विचार रूप में दिया गया है। तो ये सब हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो इस लाइन में हम पढ़ा रहे हैं। हम लोग सात दिनों में आठ दिनों में उन्हीं सब विषय को प्रारंभिक से जैसे कि पूज्य पाठ से विकम माया जी ने कहा वहाँ से आरंभ करके महाप्रभु जी के विशेष अवदान को जो कुछ कभी नहीं दे सके, राम जी तो बात क्या है और कोई आचार नहीं दे सके, उनके अवदानों का हम लोग वर्णन करेंगे धीरे धीरे। आप लोग इसको समय करेंगे विशेष करके हम लोग आदमी से इतने आए हैं, हम लोग चाहते थे याद में तो इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते, घर नहीं दे सकते, ये बात ठीक है किंतु हृदय में घर है, गुरु जी ने हमारे हम लोगों के हृदय में घर बनाया है। कुछ कष्ट हो सकता है कुछ भी आदमियों के लिए, घर स्नान नहीं दे सकते, बाथरूम में टच भी नहीं दे सकते, किंतु ये जो हरि कथा होगी महाप्रभु की विचारधारा उसको देना अपने का जीवन की पाठ हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज जी बुलाते आप लोग कष्ट प्रचार करते रहेंगे, मैं जानता हूँ कि पति वर्ष आप लोग रहते हैं, आप लोग इसके लिए भूखे लिए नहीं आए हैं, भोजन पान के लिए नहीं आए हैं, घर के लिए नहीं आए हैं, किसी प्रकार से विशेष करके बंगाल के हम देखते हैं पेड़ों के नीचे में कोई घर नहीं है, आसमान के नीचे में बैठे जाए सो हैं हम लोग उनसे ऋण हैं, जो उनको कोई चीज की जरूरत नहीं हर कथा चाहिए प्रसाद हम लोग जो कुछ दे देते हैं ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें कष्ट आप लोगों को होगा क्योंकि एक महान उद्देश्य के लाभ के लिए आप लोग इसको स्वीकार करेंगे। तब दूसरी बात इसलिए कि सब हम लोग भक्तिविनोद ठाकुर के परिक्रमा के अनुसार में हम लोगों को जाना चाहिए था मायापुर में, अंतर्दृष्टि परिक्रमा आरंभ होनी चाहिए थी, किंतु हमारे गुरु जी ने एक परंपरा रखी है धाम परिक्रमा कराने वाले, धाम को प्रकट करने वाले श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ये संकीर्तन के भी मुख्य हैं और धाम प्रकाशक है। पहले हम लोग उनके चरण में जाकर के वंदना करें और उनसे आदेश लेकर के नृसिंह देव की यहाँ जाएंगे जो हम लोग की रक्षा करें। इसलिए हमको कैसा मालूम होता है ये पद्धति पूर्व की अपेक्षा भी और अधिक सुंदर और उपयुक्त है। इसलिए कल हम लोग यहाँ नहीं जा करके हम लोग जाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ गोद्रुम में और उनके यहाँ से हम लोग कृपा प्रार्थना करके नृसिंह देव के यहाँ जाएंगे और फिर उनका प्रार्थना लेकर के मायापुरी व्यक्ति से हम लोग प्रणाम करेंगे और अंतिम दिन हम लोग जा करके वहाँ पर हम परिक्रमा समाप्त करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर गौ जन्मोत्सव इत्यादि होगा। आप लोग इसके लिए प्रस्तुत रहेंगे, साथ में अधिक पैसे मत लेंगे, नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं साथ में सोने के आदमी सब इत्यादि मत लेंगे, सब चीजों को यहाँ रख करके उचित रूप में और सब
दस्तावेज भले
और
पासपोर्ट नहीं देना, पैसा नहीं देना, मनी
ये तो नशे की और पासपोर्ट है नहीं और अधिक मत लें और बाकी रामचंद्र जी बतलाएं और सब जो बातें हैं महाराज ये लोग और सब कुछ बोलेंगे
और बोल दिया
आप कुछ बोलिए
बोल दिए मंदिर परिक्रमा कथा मैं आलोचना शुद्ध परिक्रमा जातायात कर ले कि हमें प्रदर्शन সরস্বতী প্রভুপাল তিনি বলছেন যে ঈশ্বর কখনো দান আসতো না, তাহলে বৃন্দাবন ধামকে আশ্রয় করবার একটা উপায় হয়, আর যদি এটা না হয় তাহলে চেষ্টা বৃদ্ধা গৌরপূর্ণকে যদি উপাসনা করা যায় তাহলে তারা লাগবেন সেবা প্রাপ্তি অতি সম্ভাবনা। এসব কথাগুলো আছে। আবার কোন জায়গায় বলা হচ্ছে, আবার কোন জায়গায় বলা হচ্ছে নবদ্বীপ ধাম বৃন্দাবন। আবার বলা হল বৃন্দাবন গুপ্ত নবদ্বীপ ধাম। এইসব কথাগুলো সামঞ্জস্য আছে। শাস্ত্রকারগণ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাদের গৌরীয় গুরুবর্গ গোস্বামীগণ, তারা এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সব বিষয় আমাদের খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করতে হবে, বুঝতে হবে। আমরা সবসময় ধ্যানে আসবার সুযোগ পাই না, সবসময় ধ্যানে আসবার সুযোগ পাই না। কিন্তু যেখানেই থাকি না কেন, সেখানেই যদি আমরা চিন্তা ভাবনা রাখি, নবদ্বীপ ধ্যানে এসে গৌর ধ্যানে এসে এখানকার যে তত্ত্ব সিদ্ধান্ত সেগুলো যদি সর্বক্ষণ আমরা স্মরণ করি, সেখানেই পারি না কেন, তাহলে আমি হাঁটা হয় এবং সুচেতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হয়, তার ভক্তগণের কৃপা লাভ হয়। সব কথাগুলো শাস্ত্রে আছে। সুতরাং সুযোগ আমাদের যে কোনোভাবে লাভ করতে হবে, পারি না কেন। বাড়িতে ফিরে গেলে ধান থেকে এইসব চিন্তাগুলোই রাখতে হবে। আমরা যত দিকে দূরেই থাকি না কেন, আমাদের এইসব চিন্তা ভাবনাগুলো আমাদেরকে সঞ্জীবিত করতে হবে। আমরা যদি ভাবি না এখানে এসে যে কেউ ফিরে যাব, আমরা সেই শেষকে বজায় রাখতে হবে। একজন বড় কথা সমবাদ এটাও ভালো, যদি আমরা সেই চিন্তা ভাবনাগুলো নিয়ে করতে পারি। সেই চিন্তা বাস্তব অবাস্তব সব ক্ষেত্র আছে, এই হিসাবেই আমাদের চিন্তা হবে। প্রথম মুক্তি তো আমরা মুক্ত হতে পারি না, বদ্ধ যুগ আমরা প্রচার ছৌ। সুতরাং আমাদের অনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিয়ে চলতে হবে। যদি উৎকটতা থাকে, সরলতা থাকে, তাহলে কোনোদিন ভগবান গুরু বৈষ্ণব আমাদের সেসব চিন্তা করবেন, আমরা যোগ্য হব। আমাদের হৃদয়ে সেই ভাব রেখেই ধাম দর্শন করতে হবে, গুরু বৈষ্ণবকে দর্শন করতে হবে, বিগ্রহ দর্শন করতে হবে এবং সব তত্ত্ব সিদ্ধান্ত সেইভাবে আমাদের আলোচনা করতে হবে। আমার সময়ের যে কম, সেই জন্য আমি এই Thank you.